पर्याय का पर्याय का व्यवहार देवता निश्चय देवता व्यवहार बाद में देखने है। आज प्रश्न साल ज्ञान में डाटा पचपन से अठावन में आया कि पढ़ता जानना मति ज्ञान के अवैध आदि से होता है और अपना जानना स्व संवेदन प्रत्यक्ष से होता है। समय ज्ञान समय दर्शन पूर्वक मति ज्ञान में होता है, अश्व ज्ञान में होता है और मति ज्ञान भी समय ज्ञान है, स्व ज्ञान भी समय ज्ञान है। उसमें भी आया है कि भगवान किसी भी पदार्थ को या फल को प्रक्रिया से नहीं जानते, वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो डायरेक्ट संपूर्ण पदार्थ पूरे स्वरूप से ज्ञान में जानने में आता है। तो अभी जानने में ही जो प्रोसीजर है विकल्प से उपयोग होगा और स्वरूप में जो विकल्प हुआ निकल जाए पश्चात मैंने कई जगह जयपुर शरीर में वो ड्रेसपोर्ट स्थिति तो अभिमन का अवलंबन है। फिर अवलंबन सूर्य के स्वरूप में समाने लगा समा गया तो प्रोसीजर में दर्शनों के योग से लेके सूर्य ज्ञान तक की प्रोसीजर संपन्न होती और ये ज्ञान को अखंड एक चीज है। ये तो इस स्टेज में उसका नाम मति ज्ञान है, इस स्टेज में उसका नाम सूर्य ज्ञान है, इस प्रोसीजर में उसका नाम वही ज्ञान है। तो वो समय ज्ञान मति ज्ञान भी समय ज्ञान है। एक बात समझ लेना कि समय ज्ञान में सूर्य ज्ञान में जो प्रमाण होता है उसका दो अर्थ होता है। एक तो नए प्रमाण वाला प्रमाण सपना देखी दोनों वस्तुओं को जानता है बिना मुख्य गौण किए और एक सर्व परिभाषा है सभी ज्ञानों में लागू करती है पांचों में सर्वज्ञ बड़े अनंत बताए रहित पना वो मति सुंदी महीना पड़ेगा जिसकी मति ज्ञान सुनिया एक अवधि महीने पड़ेगा उसने वो फल प्रदान है तो भी वो फल प्रदान में उसने एक तो बुद्धि नहीं होती इसलिए संशय बताए रहे करना होने से पांचों ज्ञान सुनने दिया जो कि और कारण है। ये मुझे मैं घर का काम करने के लिए मैं जाता हूँ नेपाल मैं घर का काम नहीं करता ये लड़ाई कैसे है मेरे अच्छा प्रश्न है निर्णय करने का भाव बना ही तो मैं हिंदू धर्म हूँ चेतन धर्म हूँ और कोई धर्म की सारी सीमा उसकी पर्याय होती है उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं होता जो अगले वैद्य धर्मकर्ता पर्याय तो कर तो मैं ज्यादा पहले उसको कर रहे हैं चेतन धर्म हूँ हिंदू धर्म हूँ उसका कार्य क्या है वस्तुत्व क्या है सामान्य गुणों को अगर अच्छी तरह आप समझेंगे सामान्य गुणों को नहीं समझने के लिए थोड़ी बुद्धि नहीं थी चेतन उत्पन्न हो गई अस्तित्व मेरा नाम है अस्तित्व वस्तुत्व के आपके जिसका की कारण है तो जगत में जितने पदार्थों का अपना अर्थक्रिया कारक है तो मैं चेतन रूप हूँ ठीक है ना तो और उसके बाहर का और कोई कार्य मैं नहीं कर सकता है ये कार्य में बात आ गई जाने दिन का हम राजी जगत बुद्धि वाली राजी हो रहे ना करने का मुझे बनाना है खाना ये करना है सारी चीज हो रही तो राजी जगत बुद्धि वाली बुद्धि ही वो शायद बोलते हैं उसकी परवाह नहीं उसके बाहर भी आप नहीं गए तो घर से बाहर से क्या शरीर से भी किसी परवाह की नहीं करता हम आप नहीं बारह साल में छोटे जो है हाथ में हुआ तीसरी मोटर बता दो जवाब नहीं बोल सकता तो अपन न्याय के करता है सबसे पहले बात अपने जीव स्वरूप का स्वरूप समझने आते ही कि मेरी राज्य सीमा ज्ञान के जाते बाहर नहीं है तो ये बात है कि अभी रात हो गया घर का काम करना है बनाना खाना हो गए ज्ञान को लेकिन वो वास्तव में जानता है कि ये राज का बिगड़ता ही स्वरूप होगा और जाने के लिए तो आज मैं नहीं कहता ऐसे आप अगर ये ज्ञान करके ये उसमें आता है जो था हिंदी दुआ में जाता है उसमें जय कार्य करता था ये आए तो ज्ञान और क्या है ज्ञारे ज्यादा ज्ञान जीवन पर चीज में है तो ये है तो किस प्रकार का भेजना है कि आपका हल हो जाता है कुछ भाई जीवाणी के अंदर अपने विषय लिया था कि प्रतिपादन की जो शैली है उसके अंदर में एक तो बात आती है दूसरे को पर्याय की व्यवस्था की बात और एक बात आती है प्रयोजन की सिद्धि की बात, पदार्थ की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि। अभी भी द्रव्य को पर्याय की व्यवस्था जैसे अकर्ता का अपना विषय चला, भाई साहब ने लिया कर्ता कर्म का विषय चला, तो सारी व्यवस्था यदि उसके ज्ञान में ना हो तो काम नहीं हो सकता। खाली द्रव्य को माने पर्याय को न माने तो वेदांत में चला जाएगा, फिर पर्याय को माने द्रव्य को न माने तो बोध में चला जाएगा, फिर तो चल नहीं सकता जैन शासन के अंदर। तो वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसे आपको समझनी होगी। वे गुरुदेव के सच्चे संतान बनने के शिष्य बनने के लिए जो पुरुषार्थ होना चाहिए यह बात है कि वस्तु व्यवस्था को समझना, स्वाध्याय नियमित करना और स्वाध्याय के अंदर में आचार्य भगवान या गुरुदेव कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसके मर्म में उसके हृदय पे जाना और जब तक वो हृदय समझ में नहीं आवे तब तक पढ़ते ही रहना, ऐसा मत करना। हर समझ में आना चाहिए क्योंकि खाली पढ़ ले सर्वतम से सब कुछ धारणा के अंदर में सब कुछ ग्रहण कर ले, लेकिन अंतरंग के अंदर में उसका यदि परिणाम ना हो, अभिप्राय उसका ऐसा न बने तो स्वाध्याय स्वाध्याय ही कहा जाता, पराध्याय कहा जाता है। तो अपन पदार्थ की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि ये दोनों ही विषय के अंतर्गत पदार्थ की सिद्धि अच्छी तरीके से समझकर प्रयोजन की सिद्धि अभी अभी भाई साहब ने प्रतिष्ठित दिया द्रव्य प्रकाश का या मनोभूति दर्शन का, तो इसके अंदर में सारा का सारा प्रैक्टिकल मार्ग है। आज भी सोनाली जी सोनगढ़ जाकर गुरुदेव श्री के एक प्रवचन सुनकर आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, तो अनुभूति सरल ही होनी चाहिए। बाबूजी ने भी कहा आत्मा की अनुभूति सरल है, कठिन मानना ही कठिनाई, कठिनाई मानना ही कठिनता। तो अपने को वस्तु व्यवस्था को समझना, व्यवस्था समझ के अपेक्षाओं को समझना, सापेक्षता को समझना, सापेक्षता समझ कर निरपेक्षता को समझ कर निरपेक्ष त्रिकाली गुरु तत्व के अंदर में अहम करना, जो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की विधि यानी सम्यक दर्शन का विषय ये दोनों ले पूज्य बाबूजी का अपना स्वाध्याय के अंदर में चला, तो उसके माध्यम से यदि सही तरीके से चिंतन मनन करे। देखिए शुरुआत होती है तो मारा हमारा पहले दिन भी मैंने कहा था मारा हमारा आत्मा जुड़िए ये अभिप्राय की चाह रहे थे, मेरे को अभी आत्मा चाहिए इस अभिप्राय से, इस जिज्ञासा से चलता है। लेकिन जब आगे बढ़ता चला जाता है वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत आगे बढ़ता है तब शुद्धात्मा पे आता है, भगवान आत्मा पे आता है, उसके अंदर में भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास जब आता है तो पर्याय की पात्रता सोमन जी को पूछा गया कि सर्वप्रथम पात्रता शू है, सर्वप्रथम पात्रता क्या है, तो उसने सर्वप्रथम पात्रता का स्वरूप यह बताया कि मैं निष्क्रिय और परिणामी परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करना ही प्रथम पात्रता है। तो बात अनेक रकम की आती है, हर तरह से बात को समेट कर मूलभूत स्वभाव के ऊपर आना ये पद्धति है गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनने। आप कहते हो कि तीन चार गल्ला का स्वाध्याय एक दो घंटा एकांत में बैठ कर चिंतन मनन करने से कार्य नहीं आए, तो द्रव्य में पलटने वाली ने गति जाने आज हूँ छू एम अहम स्थापित कर तो आना मैं शू करूँ के करूँ प्रयोग पद्धति समझावानी। अब मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था कि अपन यदि एक घंटा पूजन करते हैं तो तीन घंटा स्वाध्याय होना चाहिए, दो घंटा पूजन करते हैं तो छह घंटा स्वाध्याय होना चाहिए। तो मैंने होने की बात की थी, इससे कार्य नहीं होगा ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात स्वाध्याय होना ही चाहिए और स्वाध्याय करके स्वाध्याय किस तरह से होना चाहिए ये बात भी मैंने बंसरी बहन के उदाहरण से उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिला उस मार्गदर्शन के माध्यम से कहा था कि स्वाध्याय जिनवाणी को लेकर स्वाध्याय का नाव। यदि आप गुरुदेव के प्रवचन में रोज बैठते हैं तो गुरुदेव का जो विषय आने वाला है उस विषय का पहले आप स्वाध्याय करके गुरुदेव के प्रवचन में बैठे,
जैसे आप यदि स्वप्न स्वाध्याय करके जाओगे तो पता चलेगा कि अपन कहाँ तक जा सकते हैं, अपनी सोच कितनी सच्ची है, अपना विचार कितना बराबर है, और उसके अंदर में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, फिर उससे मिलान करना, ये भी एक शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति है। तो उससे मैंने ऐसा कहा कि सिर्फ चिंतन मनन करने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, स्वभाव के अंदर बैठने से पलट लगा के जो सोगानी जी का शब्द है कि प्रतिमा समान अपरिणामी को देखो, और उसमें पलाटी लगा के बैठने से आत्मा की अनुभूति होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि स्वाध्याय के अंदर में स्वाध्याय करने की भी एक पद्धति होती है। अपन रोज दो चार पाँच घंटा स्वाध्याय कर ला, बोला हम घंटा दो घंटा चिंतन मनन भी करते, मेरे पास से बहुत लोग मिलते हैं कि हम छह छह घंटा एकांत में बैठते हैं लेकिन फिर भी अनुभूति नहीं होती। अब वो चिंतन करते हैं अनुभूति करने के लिए, तो इसके अंदर अनुभूति नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना ही प्रयत्न करे नहीं हो सकता। मैं परमात्मा हूँ वो चिंतन तो वो चलना चाहिए, आप कुछ भी चिंतन चलो, जो भी सब्जेक्ट आपका चलता हो, स्वाध्याय के अंदर में हो, गुरुदेव के प्रवचन में हो, उससे सुनकर आपको निर्णय करना है, बात को सुनकर निकल नहीं जाना। अभिवेक सब ने कहा था कि वो मंदिर का धन स्वाध्याय, मंदिर का धन स्वाध्याय मंदिर में रखकर चले जाते, नहीं होना चाहिए, एक घर पर लेकर जाना चाहिए। वो बोलते हम तो निकम्मा नहीं है कि मंदिर का धन भी साथ ले जाए, तो स्वाध्याय मंदिर का चीज स्वाध्याय मंदिर में सुन के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर में वस्तु व्यवस्था का सही तरीके से चिंतन मनन करे, उसमें यथार्थ निर्णय करे। अब यथार्थ निर्णय ज्ञान में होता है, पक्का निर्णय श्रद्धा में होता है, तब जाके अनुभूति होती है। अब ज्ञान की व्यवस्था और श्रद्धा की व्यवस्था, अब श्रद्धा की सारी व्यवस्था तो दोनों ही दिनों अपने स्वाध्याय के अंदर में चला। अब ज्ञान की व्यवस्था जो बाबू जी का चौथा अंतिम लेख है उसको अपन कल स्वाध्याय करेंगे तो उससे विदित हो जाएगा। जो चैतन्य ध्रुव सत्ता है ऐसा कैसे मानने में आवे, ऐसा स्वीकार कैसे आवे, श्रद्धा का विषय में पर्याय का प्रवेश कैसे मिटे, आग्रह क्या रहता है, सवाल एक बार फिर से दोहरा जाए तो अच्छा रहेगा।
पर्याय मिलाने का आग्रह नहीं
रहता है, तो प्रमाणाभास का लोभ है, प्रमाण का लोभ है, किसी के वजह से श्रद्धा के विषय में भी वो पर्याय को मिलाना चाहती है। वो भी बाबू जी ने कहा कि प्रमाणाभास से ग्राहकीभूत होने के कारण, वो प्रमाणाभास से ग्राहकीभूत हुआ है तो श्रद्धा के विषय में भी वो पर्याय को साथ में रखना चाहता है, जो किसी भी अपेक्षा से रह नहीं सकती। श्रद्धा का स्वरूप ये है कि वो खुद ही नहीं रहती, वो खुद अपने आप को मैं ध्रुव हूँ ऐसा देखती है, और जो मैं अपने आप को ध्रुव हूँ देखती है वहाँ तो पर्याय ही नहीं है। समय दर्शन में समय दर्शन की पर्याय को कोई जगह नहीं है, समय दर्शन ने अपने कोने कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया है, तब वो रह कैसे सकती है। और जब वो अपने आप को मैं परमात्मा हूँ ध्रुव तत्व हूँ ऐसा देखती है तब वो पर्याय नहीं है, वो ध्रुव है। उसमें द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता है। लेकिन जब विकल्प में आ जाता है तब पता चलता है आनंद आया था, आनंद चला गया तो पर्याय चली गई, तो पर्याय का देय हो गया, द्रव्य रूपये भी रह गया। तब विकल्प में आने के बाद उसका भास होता, अनुमान होता है। वास्तविक जब अनुभव होता है तो बस स्वसंवेदन के अलावा, निर्विकल्प स्वसंवेदन के अलावा कुछ नहीं होता, आनंद ही आनंद, कोरा आनंद ही आनंद, सोगन जी के शब्दों में कोरा आनंद ही आनंद,
बिना विकल्प,
बिना विकल्प का कोरा आनंद ही आनंद,
अनुभूति की मोहर है।
बस अनुभूति की मोहर है, बिना विकल्प का कोरा आनंद ही आनंद पत्र में है, बहुत सुंदर बात। देखिए सोगानी जी इस युग के ऐसे पुरुष हुए, यदि मैं अंगत में गुरुदेव के शब्दों को यदि सबके सामने रखूं तो गुरुदेव श्री का कहना यह था कि अपना दुर्भाग्य था कि सोगानी जी ज्यादा नहीं जिए, यदि और कुछ समय जिए होते तो अपने को छठे पाते गुरुस्थान में झूलने वाले मिराज का शायद दर्शन हो जाए। एक बार तो ऐसा बोला, कभी कभी उनको यदि दिन में छह सात बार अनुभव हो जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं।
बहुत निष्प्रवृत्ति थी,
निरपेक्ष वृत्ति, मैंने कहीं पे किसी भी परिस्थिति की कोई परवाह नहीं रहती थी, शराब हो गया तो पता ही नहीं चला। अब बच्चे लोग बोलते तो बाबा जी आपको क्या हुआ, खून बह रहा, तुम तो पता ही चलता। तो वस्तु की स्वभाव की धूम तो ऐसी होनी चाहिए, स्वभाव की मस्ती ऐसी होती है, और उस वस्तु की मस्ती में ही सारा का सारा काम होता है। अज्ञान में अज्ञान का अंत कैसे हो, अज्ञान दशा में अज्ञान का स्वरूप कैसे मालूम पड़ता है। अब अज्ञान के अंदर में अज्ञान है ऐसा पता कहां चलता है? नहीं, अज्ञानी को ऐसा विकल्प नहीं आता कि हम परतंत्र है स्वतंत्र हो, हम गुलाम है हमको स्वतंत्रता चाहिए। ये विकल्प किसको आता है? गुलाम को आता है, नहीं जो अमेरिका में जो स्वतंत्र है उसको आता है, गुलाम को आता है। जो परतंत्र है उसको स्वतंत्रता का विकल्प आता है, जो अज्ञानी है उसको अज्ञान का अंत कैसे हो ऐसा विकल्प आता है। तो अज्ञान का अंत कैसे हो इसका जन्म ही ज्ञान में होता है, और उसने अज्ञान का स्वरूप जान लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अज्ञान का स्वरूप क्या है तो उसे पता चल गया। अपने स्वभाव को, अपने जो स्वभाव अपने जानने में आ रहा है उसको नहीं जानना, वो मिथ्या ज्ञान है। तो जो मिथ्या ज्ञान है उसका स्वरूप उसे पता चल गया कि हमने क्या नहीं किया। तो ये प्रबल अज्ञान के अंदर में अज्ञान का अंत कैसे हो तो विकल्प आ ही नहीं सकता। हाँ, अज्ञान का प्राण बोला ना, अज्ञान का प्राण, अज्ञान का प्राण का अंत हो ऐसा एक वचन है। तो जब उसकी प्रबल पात्रता जागृत होती है, क्योंकि जब अपात्रता हो अभव्यता हो तब ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि अज्ञान का अंत कैसे हो। असत्युत का परिणाम अभी ये तो जो प्रयोग की चीजें हो तो प्रयोग तो स्वयं को ही करना होगा, लेबोरेटरी में जाना होगा और प्रयोग करना होगा। अब प्रयोग जहाँ थियरी चलती है वहाँ पर नहीं हो सकता है, प्रयोग लेबोरेटरी में जाके ही हो सकता है। तो अपनी लेबोरेटरी तो अंतरंग में है, अंतरंग में जाकर लेबोरेटरी में भी प्रयोग करे।
ज्ञान ज्ञान ही प्रयोगशाला है,
बस ज्ञान ही प्रयोगशाला है। वहाँ पे जाकर प्रयत्न करे तो उसको पता चलता है कि उसको अपने स्वभाव की प्रीति कितनी है, रुचि कितनी है, स्थिरता कितनी रहती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, स्थिरता का प्रकार कैसा है, उसके अंदर में इधर उधर के विकल्प कितने आ जाते हैं, कहाँ मन घूमते रहता है, या स्थिर रहता है तो कितनी हद तक स्थिर रहता है। और बाबू जी ने तत्व ज्ञान के प्रकरण के अंदर में पूरा मार्ग बतला है, देह से भिन्न, कर्म की माया से भिन्न, पुण्य पाप से भिन्न, पर्याय शक्ति से दूर, गुण भेदों से दूर, स्वभाव के अंदर में पैसता हुआ जोर पूर्वक जब परिणाम था तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तो विधान को देखिए, आज के दिन में सम्यक दर्शन का जो विधान है वो इतना स्पष्ट है कि इसके अंदर में अकर्ता स्वभाव समझ में आते ही एक्चुअली देखिए, मैं ध्रुव हूँ तो ध्रुव है कैसा, रवि भाई सर ने बात की थी, यदि अकर्ता स्वभाव उसको समझ में नहीं आता तो ध्रुव की महिमा नहीं आ सकती है। वो महिमा तो तब आती है जब उसको अकर्ता स्वभाव समझ में आ रहा, क्योंकि वो पर्याय से बात को नहीं सुनता, क्योंकि पर्याय से बात चले तो कुछ और चलती है। पर्याय के लिए तो पर्याय की आत्मा, ज्ञान से आत्मा, जब पर्याय से बात चले तो, जब द्रव्य से बात चले तो मैं अपरिणामी, मैं अकर्ता, मैं अवेदक, मैं अभोक्ता, बात कहाँ से चलती है तो बात उसके ख्याल में आनी चाहिए। यदि ये पर्याय का प्रकरण है, पर्याय की सिद्धि करनी है, पर्याय की अपेक्षा से बात है, पर्याय की सापेक्षता से बात है तो बात कुछ और चलेगी, द्रव्य की अपेक्षा से बात है तो बात कुछ और चलेगी, पर्याय की बात चले तो ऐसा कहते हैं पर्याय ही आत्मा होते हैं, आत्मा की राजनीति है, आत्मा की नरक में जाए थे, आत्मा की दूसरे भोगे थे। अब कौन सा चक्रण है, चक्रण को समझ कर अपने को निर्णय लेना चाहिए। जब अकर्ता स्वभाव की बात चलती है तो ध्रुव से बात चली है, अकर्ता स्वभाव से बात चली है तो अकर्ता स्वभाव से स्वभाव को समझते हुए यदि उसके अंदर में अहम का प्रयत्न करे तो अनुभूति किसी भी अपेक्षा से कठिन नहीं हो सकती। लेकिन वो कर्तृत्व का बोझा रहता है तो फिर सुखानी की जैसी वाली बात होनी चाहिए कि करना तो मरना है, तो करना बनना लगना चाहिए। अनुभव करूँ से हमारा आत्मा घात उठाई थे कि वो सिलिंग में आनी चाहिए, कि वो इन्हें वेदन को मिली है। अभी वो तो खुद पर कहते तो गुरुदेव क्या करते हैं, रास्ता बतला देते, अब चलना किसको होगा, खुद को ही चलना होगा। देखिए व्यवस्था क्या है, स्वरूप कैसा है, अनुभूति किस विधि से होती है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, श्रद्धा का स्वरूप क्या है, श्रद्धा का श्रद्धेय कैसा है, उस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा नहीं बचती, श्रद्धेय के अंदर में मात्र गुरु बचता है, ये सारी की सारी बात, सारा का सारा विधान आज बाबू जी के माध्यम से, सोगानी जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, बेलत्री बहन के माध्यम से आज अपने सामने अत्यंत स्पष्ट है, जिसके अंदर में किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। अभी बात इतनी है कि अपने कितना फोकस है, यदि अपना फोकस सही है तो रास्ता सरल है। फोकस इधर भी है, उधर भी है, ये भी है, वैसा भी है, इस अपेक्षा से वो है, उस अपेक्षा से यह है, अभी वो सारी अपेक्षाओं लगातार है और नई के चक्रावा के अंदर में, नई के प्रपंच के अंदर में उलझा रहा है तो मार्ग कठिन है। और देखिए अनंत पुरुषार्थ की बात भी जो कही गई है उसका भी एक बहुत सीधा साधा उदाहरण हमने गुरुदेव से सुना था कि आज कोई एक व्यक्ति बोला कि तू प्रकाश छो, अभी प्रकाश प्रकाश की सिद्धि करवा माटे अमेरिका में आ जाओ, અને કે આ જે ભાઈ છે ને એ હું નથી, આ જે ભાઈ છે ને એ હું નથી, આ જે ભાઈ છે ને એ હું નથી, આ ક્લિન્ટન છે ને હું નથી, બુશ છે ને હું નથી, ઓબામા છે ને હું નથી, એમાં એસી જેને પકડીને નથી 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 કરે તો પોતાની અસ્થિ થશે, અનંત જીવ નાસ્તિમાં એકની અસ્થિ નથી થતી, એકની અસ્થિમાં અનંત નાસ્તિ થઈ જાય, તો માર્ગ તો સરળ છે, એકની અસ્થિ થાય અનંત ની નાસ્તિ સમજી લીધી અને બુદ્ધિપૂર્વક બધાને સમજાય છે મારામાં પરનો અભાવ કેવી રીતે છે, બે પદાર્થની ભિન્નતા સમજાય છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કઈ કરી શકતો નથી સમજાય છે, પેટ્રોલ થી ગાડી ચાલતી નથી સમજાય છે, એ બધી વ્યવસ્થા આપણા જ્ઞાનની અંદરમાં ચોખ્ખી છે, હવે કામ આપણું છે કે આપણે એકાંતમાં આપણી સાથે બેસીને વસ્તુને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આત્માની સાથે બેન્સ્રીબેન એમ કે આત્માની સાથે વાતો કરીએ, વાતો કરે ને તો એને ખબર પડે કે પોતાને પ્રશ્ન થાય કે એનો જવાબ આવે છે, એ જવાબ કેટલો વ્યવસ્થિત છે, ક્યાંથી આવે છે, ત્યારે એમને વસ્તુ સુધી પહોંચી શકાય છે, અને વસ્તુ વ્યવસ્થાના અંતર્ગત પોતાના સ્વભાવની જો મહિમા હોય તો વસ્તુનો પ્રાપ્તિ સુલભ છે, કારણ કે આ જો સુલભ ન હોત તો ગુરુદેવ જેવા પુરુષ ભરતસૂત્રમાં આવત જ નહીં, આ જીવની જો પાત્ર આપણે સમજી લીધું છે કે આ કઠિન છે, જો સૈન્ય એ આત્મા કે અનુભૂતિ કઠિન હોતી તો ગુરુદેવ કહો મહાદેવ કે ભરતપુત્ર આને કે કોઈ જરૂર જ નથી, તો ક્યુ આ સુમંદર ભગવાન ને ક્યુ ભેજા, હમ સૌ કે લીધે ભેજા ને, અષ્ટક તત્વ કી પ્રીતિ હૈ, રુચિ હૈ, પ્રેમ હૈ, સમર્પણતા હૈ, સમજને કે લીધે સબ સમય એકદમ એકાગ્ર ચિત્ત સે ઇસકો સમજને કે લીધે તત્પર રહેતે હૈ, અભી અપન ફોકસ હૈ, ફોકસ સહી હોગા તો માર્ગ સરળ હૈ।
इतना ही देखा मुझे जो कहा था गुरु का ज्ञान को मार्ग दिखाएगा, ये का ज्ञान उसको काम आएगा, और मैंने जब तक भाव गुणा का जन्म मरण का हमें दुखी नहीं लगता हो अथवा जिसके तो हमसे छोटा रहेगा वो आत्मा में तो प्रति नंबर नहीं है, ये बात सबकी
अज्ञान का ज्ञान का यह क्रियात्मक प्रश्न है, क्रियात्मक प्रश्न अश्लेषण મને મુખ્ય પ્રશ્ન હૈ કે અજ્ઞાન કા અંત કેસે હો, કે અજ્ઞાન કા મુખ્ય પ્રશ્ન
તીજા માને હોતા હૈ અવગર ઇંધા, તો મતી જ્ઞાન થી એક વિષય થઈ ગયે, તો તીજા કા અંતર હોતા હૈ કે જ્ઞાન કા કે ક્યા હૈ, સામે ખૂબ લિખા તો એ દ્રશ્ય હૈ કે પુરુષ હૈ, એસા નિર્ણય કરને કી જિજ્ઞાસા, તો એ તીજા કા જે હૈ વો જિજ્ઞાસા આત્મક પ્રશ્ન હૈ,
સંખ્યાત્મક નહીં। હા
હા મેં ગુરુને થોડું સમજાવું છું, પણ બાબુજીને વાત થોડી થી થોડી સમજાવી, કુછ બાકી નહીં રહ્યા, હવે આમ લે વાત તો બાકી મત કરો,
બહુત હો इससे स्वाध्याय करना चाहिए, चैतन्य जी चहल पहल का आप जो पांच एक एक पंक्ति से घर पे स्वाध्याय करना चाहिए।
गुरुदेव से एक बार ऐसा सुना था जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश का तीसरा भाग बार पड़ा था और एकांत में गुरुदेव खुद स्वयं उनका जब स्वाध्याय करते थे तो गुरुदेव का कहना यह था कि इस युग के अंदर जो आत्मा की हो उसको प्रथम से अंत तक और अंत से प्रथम तक द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय करना है। चैतन्य की चहल पहल भी ऐसी ही आध्यात्मिक शास्त्र है, पुस्तिका नहीं है, लेख नहीं है, तथा शास्त्र है जिसके अंदर में आत्मा की पूरी व्यवस्था दृष्टि का विषय किस तरह से ज्ञान श्रद्धा में आता है के बात स्पष्ट हुआ। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, गुरुदेव को इसका विकल्प बहुत रहता हूँ, लेकिन गुरुदेव श्री का यदि अंगद शब्द जो सुना है गुरुदेव के मुखों से कानों कान सुना है तो ध्रुव दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय करने के पश्चात गुरुदेव ने गुरु क्या ध्रुव दृष्टि प्रकाश की हमने छूट मान ली है, द्रव्य दृष्टि की बात जोर शोर करने की छूट हमें नहीं दी है, पावर बढ़ गया, हमने सबको इसका स्वाध्याय करने लगे हैं। और जिस दिन पहली बार एकदम तीसरा भाग भावनगर में छपा, सचिव भाई 500 पुस्तक लेके सोनगढ़ में आए, तब सोनगढ़ जी के धर्मपति अनुपमा मासी वहां सोनगढ़ में हमारे घर पर खड़ी हुई थी, सचिव भाई हमारे घर का है, मैं सचिव भाई और अनुपमा मासी हूँ, तीन जन गुरुदेव ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश तीसरा भाग अर्पण करने के लिए। जब सचिव भाई ने जाके कहा कि साहब हम तीसरा भाग लेके आ गए, तो गुरुदेव ने सीमन भाई को और आत्माराम जी को बुला के बोला को जितना गाड़ी में पुस्तक है आप निकाल के यहाँ पे हमारे सामने रखो।
अच्छा,
और वो 25-25 की थप्पी करो, 25-25 की थप्पी करो, वो 25-25 का लाख रखवा, फिर खुद जहाँ बैठे थे वहाँ से उठे और से हाथ धुआ के देख लिया कि सब समान है कि नहीं, और 1, 2, 3, 4, 20 थप्पी गिन दी तो 25 × 20 500 हो गए। फिर मेरे को बोला एक देखो एक कबाट अलमारी मैंने पूरी खाली करवा दी है, इसके अंदर मैं सारे पुस्तक रखती हूँ, तो पूरी अलमारी थी उसके अंदर मैं सारी की सारी पुस्तक मैंने अपने हाथ से रखी है, और रखने के बाद में बोला दो पुस्तक दो मांग, दो पुस्तक दिया, एक सबसे पहले सचिव भाई को दिया और दूसरा अनुपम मासूमा को दिया, तो अनुपम तुरंत बोले सचिव भाई के पास, गुरुदेव को तो कुछ बोल नहीं पाई लेकिन सचिव भाई को बोला कि आप गुरुदेव को क्या एक की अंदर सूच है, हमें तो 10-12 पुस्तकें चाहिए, तो सचिव ने कहा कि साहब हमने 10-12 पुस्तक दी तो किसके लिए, तो बोले देखिए हमारी 3 बेटियां हैं तो 3 कवर साहब के लिए चाहिए, 4 बेटे हैं उसके संबंधी के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, ऐसा उसने 13 लोग गिनवा दिए। जब 13 लोग गिनवा दिए तो गुरुदेव ने पूछा कि साल में यहाँ पर कितनी बार आते हैं, तो उन्होंने बताया क्या है क्या कभी कभी आदमी है अमृत नो प्यालो थे जे हजम करी लेते अमृत मई बनी जाते हैं, जे हजम नहीं करी सके इन्हें कऊ झेर बनी जाते हैं, शब्द का जरूर
बिल्कुल सही बात है, वो बहुत मपा तुला किसको देते थे, जब मैंने गुरुदेव से सोलन घर दिया गोदिया की घर देखा था बुलाया है भौगोलिक, तो उस समय ये दर्शन की तरह तीसरा भाग दे रहे थे, एकदम गुरुदेव बोले सबने भाटी से मैं एकदम हाँ बोला क्या बनी एकदम प्रश्न होगा फिर आज तक हो जा रहा, तो मैंने कहा हमारे जवाहरलाल गोकुल जी का भाई ठीक है, तो बाद में वो स्कूल से भी मैंने अध्ययन है कुछ नगर से सबको ही देखे, और आपको बता दू मैं सोनगर में छोटे बात देखी बाबू की खुद आती है ये मैं नहीं मानती हुई थी जिसका अध्ययन हो बाबू बचत नहीं था, जो मैं वो जो कहता हूँ जिसको पर्याय दूसरों का चली जाती है कौन कैसे
काम को तो खुद जाकर आपने पेटिंग में से चाली निकाली अलमारी खोला और एक लेके अपने पार्क के ऊपर गए वहाँ बैठ के होम किया, होम करके दिया मेरे को और देने के बाद में बोला इसका स्वाध्याय नहीं है, कभी भी जीवन में इसको अलग अलग कौन देता है, और फिर मैंने उनको किया हुआ फिर वो पांच पुस्तक जन्मदिन के नाम दे देंगे तुम इसको भी दे देना उसको भी दे देना उसको भी करता उसको दे देना, तो इस तरह से मैंने गुरुदेव का तो ऐसा था कि शुरू शुरू के अंदर में गुरुदेव ने इसके ऊपर में बहुत कंट्रोल रखा, ऐसा 500 किताब समाप्त होने में 4 साल लगे थे तब जाके किताबें समाप्त हुई थी, इतनी चुन चुन के देते थे, पर गुरुदेव का खुद का ऐसा मानना था कि विषय आस्ते आस्ते जितलो फिरता है उतलो साल नहीं गया।
प्रवचन में याद करते थे बोलो को
कुरान जी के बोलों को मुझे प्रवचन में बहुत याद करते थे, समाज को उसका व्यू ख्याल में आ गया।
फिर कमरे में तो ऐसा चलता था कि एक को मिल गया तो दूसरा लेके जाता था, हाथ से पूरा का पूरा लेके जाता था, बड़ा के वापस लेता। गुरुदेव के पास तो कोई मन नहीं, किसी की ताकत ही नहीं कि गुरुदेव के पास में जाकर मार दूं। और पुरुष ही ऐसा था कि उसके सामने किसी का कुछ चलता नहीं था, उन्हें बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। उसका प्रभाव ही ऐसा था, प्रमाण भाषी राशि भूल ऐसे जी बड़ा पूरा सब बड़ा चल चुका है। दृष्टि के विषय में गुणों का अभेद सम्मिलित है, गुण भेद नहीं। वैसे ही एक एक विरोधी धर्मों का भेद सम्मिलित नहीं, परंतु अभेद रूप से विरोधी धर्म सम्मिलित हो इससे क्या परेशानी है, क्योंकि वस्तु गुण और धर्म स्वरूप है। गुरुदेव श्री के किस शास्त्र में कौन सी गाथा प्रवचन में दृष्टि के विषय में विरोधी धर्म शामिल न होने का कथन आया, वे तो मेरे को भी पता नहीं है कहाँ पे आया, लेकिन मैं ये प्रमाण बाबू जी का दे सकता हूँ। जो बाबू जी ने आज से कुछ टाइम पहले मेरे मोबाइल के अंदर में है, कि जिसके अंदर में बाबू जी ने बात स्पष्ट की है कि धर्म और दृष्टि के विषय के अंदर में शामिल नहीं होता। यदि किसी को भी चाहिए तो आप नंबर देंगे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बाबू जी के खुद के शब्दों में 2 साल पहले ही बाबू जी के साथ में चर्चा हुई थी, मुंबई से कुछ मुफ्त लोग गए थे और चर्चा के अंदर में बाबू जी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया था। और बाबू जी ने भी बोला कि कुछ दिन पहले हिंदू भाई मोदी से आए थे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव की रात्रि चर्चा में माया भाई ने भी ये प्रश्न पूछा था और गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि धर्म दृष्टि के अंतिम समाप्त होती, इसलिए आज सबसे बात जो हमारे अंदर में आई थी उसका प्रमाण हमें मिल गया। इतना सा प्रमाण अभी हमारे सामने है, बाकी अभी कहीं से कुछ हो तो मैं कर लूंगा। अपने कहीं तो ये चिंतन तो चिंता से हमें चिंता तो चिंता से कभी चिंतन करवा के कई पद्धति है, जिसे कहने का मतलब यह है कि यदि खाली विकल्प ही विकल्प चलता रहे तो विकल्प 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 से निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। श्रद्धा के अंदर में बात आनी चाहिए, विश्वास के अंदर में बात आनी चाहिए, ज्ञान में अपना अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए, तो विधान है चिंतन का। जब तक ज्ञान के अंदर में अस्तित्व ग्रहण नहीं होता तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। विशुद्ध चिंतन धारा का मतलब ये है कि स्वभाव की उग्रता पूर्वक स्वभाव की उत्तरता पूर्वक जो चिंतन की धारा चलती है उसके अंदर में स्वभाव उद्भव रहता है, पर्याय का महत्व नहीं रहता, यानी पर्याय का निषेध करना नहीं पड़ता और निषेध प्रवर्ता रहे, ऐसे स्वभाव की अद्भुतता चलती रहे। क्योंकि देखिये निषेध का कोई विधान नहीं है, आज बाबू जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया, तो निषेध करता रहे उसमें निषेध नहीं होता, लेकिन स्वभाव के अस्तित्व में स्वभाव के जोर में पर्याय का निषेध प्रवर्तता रहता है, ये चलता रहता है, उसको निषेध करना नहीं पड़ता, उसी को पर्याय का हेयत्व कहा गया। आपके कई वस्तु के धारणा चिंतन ना काम में नहीं आती तो अनुभव देरी से काम में आवे। मैंने जीव सर्वसम के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, धारणा के माध्यम से सब कुछ ग्रहण कर लेता है। बुद्धि के अंदर में सारी की सारी जो बात बैठ जाती है और जैसी बात बैठी है ऐसा आपस में चर्चा विचारण भी कर लेते हैं, आपस में सबको चर्चा इत्यादि भी कर लेते हैं, लेकिन खाली धारणा में दिखाने का काम नहीं होता। जब वो सेवेंसरी का शब्द है कि जब जीव प्रयोग में बैठता है तो प्रयोग के अंदर में धारणा सामने नहीं आती, वो सर्वतम रुक जाता है। स्वभाव की जो रुचि है, जिज्ञासा है, तीव्रता जो है वो जिज्ञासा लाख मन का पत्थर है, नरम भूमि से जब लाख मन का पत्थर पड़ता है तो दूसरा नीचे चला जाता है। तो मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसी वस्तु की समझ यदि सही तरीके से हो तो खाली चिंतन 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 माने चिंतन का मतलब यदि विकल्प चलता रहे तो उससे काम नहीं होता। प्रयोग के अंदर में आगे बढ़ते हुए, एकांत के अंदर में अपने साथ बात करते हुए, स्वभाव का श्रद्धान बढ़ाते हुए, ज्ञान के अंदर में वस्तु व्यवस्था को ख्याल में लेते हुए, उसी को विशुद्ध चिंतन धारा कहते हैं और उसी के अंदर में आगे बढ़ते आत्मा की अनुभूति होती है।
इसके बारे में श्लोक वाली स्वामी ने पांच सर्वान ग्रहण धारण निर्धारण और पर्यन ये उन्होंने सुना प्रश्न सुन ग्रहण हुआ वाचक के वाक्य को भी पकड़ लिया प्रयावर्ती का काम हुआ श्रवण हुआ ग्रहण ग्रहण माने सब भाव भवन हो गया उस समय और पर्यावर्ती का वाक्य तो धारणा जन का मना कहा है लेकिन निर्धारण नहीं किया तो परिणाम नहीं हुआ निर्धारण माने ये बहुत जो चीज मुझे भी ये है इस तरह का उसको अंतर थे जो सोखा है तो उसका चाहिए
देखिए
बात यह है कि प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि खाली बुद्धि के तक उसको सीमित नहीं रखना एकांत के अंदर में हम लोग जब छोटे मैं बताता हूँ सारी चीजें दोनों बहनों से हमने बहुत कुछ सुना है समझा है वो ये बात कहा करती थी कि जब आप स्वाध्याय कर लो उसके अंदर में आपको जो बात भी बैठी समझ में आई उसका चिंतन करो और चिंतन एकांत में करो ऐसा नहीं कि आपने खाली स्वाध्याय कर लिया खाली गुरुदेव को सुन लिया तो उससे काम नहीं होगा काम तो तभी होगा जब खुद उनका प्रयोग करोगे प्रयोग का होगा जब एकांत में अपने साथ बैठोगे तब तो प्रयोग के अंदर में स्वभाव का चिंतन मनन से आगे घोलन से आगे खाली चिंतन मनन से नहीं क्योंकि चिंतन तो खाली विकल्प है अब मन के अवलंबन से आप चलते रहो तो चीज पकड़ में आने वाली चीज नहीं है 320 गाथा के तीसरे प्रवचन की गुरुदेव की प्रवचन की शुरुआत वहां से होती है कि अतीन्द्रिय ज्ञान की पकड़ाई तेरी सीमा है अब वो कौन सा मन का अवलंबन ले कौन सा विकल्प करे तो अतीन्द्रिय ज्ञान पकड़ना है अपना अस्तित्व ग्रहण होना चाहिए ज्ञान के अंदर में अस्तित्व ग्रहण से आत्मा की अनुभूति होती है तो अस्तित्व ग्रहण तो खुद को ही करना होगा इसका वही मैंने ये अनुभूति एक ऐसी चीज है कि जो शब्दों के अंदर में उसका वर्णन नहीं किया जाता उसलिए श्रीमद जी ने भी केवल ज्ञान की देखिए और जे पद सर्वज्ञ दिखु ज्ञान मां कही सकता नहीं श्री भगवान जो ते पद में अन्य वाणी तो सू रहे थे मात्र अनुभव गोचर रहे होते ज्ञान जो ये अनुभव गोचर ज्ञान के अतीन्द्रिय ज्ञान की पकड़ाई चली चीज है यानी तुम्हें एक वक्त स्वयं प्रैक्टिकल करो तो सही एक बार प्रयोग करो तो सही एकांत में लेकिन ने बेचार कला जंगल में जैसे बैठो तो सही जंगल में अच्छा एकांत में व्यक्ति ने विचार चिंतन मनन की आदत आत्मा में कई से ज्ञान के अंदर में ग्रहण करो और ज्ञान को जरा बुद्धिपूर्वक समझावानी वस्तु नहीं जे अनुभव है ये कई सकात नहीं जे कहे ये अनुभव करते नहीं तो आ तो अलग निलग ने अगम निगम की बात है
हम पढ़ने से क्या उनका अंतर अपने अंदर मुझे प्राप्त किए वो कौन थे क्या कीजिए तुम स्वरूप थे मालूम कौन संबंधी बदलना चेहरा तुम किए करें पांचों के साथ पढ़ते ऐसा विचार विवेक पूर्वक शांत तो अस्तित्व कर तो सर्वात्म ज्ञान का सिद्धांत तत्व अनुभव है उसके ऊपर भी लक्ष्मी मणि अधिकार ये सारी चीज उसमें इतने संक्षेप कर पाए पदों में दे दी उनका अंतर को मिलना अंदर से आ
सूर्य बाबू जी के प्रवचन के माध्यम से जो बात बताया उससे ऐसा ध्यान में आता है कि जब भेद ज्ञान होता है तब ऐसी परिस्थिति होती है जब आनंद का अनुभव आता है तब ऐसी स्थिति होती है बधु होवा की छे करवा की कहीं नहीं तो आ वस्तु की यथावत समझा के रीते थे तो समझाओ करवा की नदी ना मतलब कर्ता बुद्धि की नदी मैंने ऐसा प्रयत्न नहीं करना ऐसी बात नहीं है देखिए कोई भी बात को एकांत किसी तरफ में मत ले जाना बात अपन एकांत किसी तरफ में होने से जब होना होगा तो होगा होना होगा तो होगा मैंने कि आपको कुछ करना ही उत्तर माना फिर तो ब्रह्मा जी हो जाएगा और वो तो दृष्टि पढ़ के तरफ ज्यादा झुकेगी, फिर बात पढ़ के तरफ ज्यादा झुके उसके लिए नहीं है, स्वभाव के तरफ आए और इसके अंदर में झूठी खोटी उतावल न खाओ, एना माटे की बात है, करता बुद्धि न खाए एना माटे की बात है, मारे अनुभव करवो छे एवी पर्याय नी महत्ता न रहे एना माटे की बात है, क्योंकि जरा थवानी से क्या थाई छे, क्योंकि पर्याय का सत्पना जब बताया गया, पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वाधीनता, पर्याय की व्यवस्था जब बतलाई गई, तो जब होना है तभी होगा, इस कहने का मतलब प्रमादी होना नहीं है, इसका मतलब पर्याय से बाहर पढ़ने आप चलाएगा वैसा नहीं है, बात तो इसके लिए है कि वहाँ से हट के आप द्रव्य पे आ जाओ, पर्याय दृष्टि मिल जाए, पर्याय बुद्धि मिल जाए, कर्ता बुद्धि मिल जाए और स्वभाव के तरफ लग तो उसके लिए बात कही जाती है। बात तो एकदम सही है कि सब कुछ होने से है, कुछ भी खाने से मना करना चाहो तो हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन द्रव्य की महिमा आते ही हो जाती है, तब उसने किया ऐसा कहने में आता है। तो इसमें और एक प्रश्न है, लेकिन इसके अंदर में रेफरेंस को पुष्टि का दिया हुआ वहीं से लेना होगा। आज सवाल पूज्य गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में परमात्मा प्रकाश की अंतर जाता महिमा भी के योगींद्र देव ने कहा कि हे योगी, परमात्मा देखो तो जीव न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंद को करता है और न मुक्त को करता है, ऐसा श्री जिनवर भगवान कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री यही कहते हैं कि करतो नहीं मात्र जाने देखे थे, जाने न देखे थे तो उपचार मात्र थे, कारण के तो पुतानी ज्ञानी पर्याय ने जाने थे कि जो ज्ञानी पर्याय नायक की कथन की कभी थे, क्योंकि नायक ने जानता पर जनाई गए थे तेम गुरुदेव श्री धन्यवाद कहे थे। हमें समय समय ज्ञानी पर्याय जे ज्ञान ने जानवा रूपे क्रमबद्ध थाई थे तेने ज्ञान की अपेक्षा नहीं, कारण के जीव ने जाना ज्ञान की पर्याय थती नहीं, ज्ञान की पर्याय पर एक समय सत ने निरपेक्ष थे, अभी ज्ञान की पर्याय जो ज्ञे रूपे थाय तरह त्या ज्ञ पर केवज हो ज्ञे की ज्ञान थतु नहीं, क्योंकि आत्मा ने ज्ञ ज्ञान संबंध पर नहीं, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, ज्ञ पर स्वतंत्र है। तो आज ना पूज्य गुरुदेव प्रवचन की आ समझ बराबर है, कहीं पर विशेष बात हो तो जरूर जनासो। अभी इसका पूरा का पूरा जवाब बाबू जी का ज्ञान स्वभाव जो लेख है उसके अंदर में है, और अपन का वो पूरा लेख नहीं है तो उसके अंदर में एक में आपने जो लिखा वो सही है, और उसके आगे भी यदि कुछ बात है तो बाबू जी के माध्यम से अपन उसको ले लेंगे। और 33 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ, अनिश्चयता उसमें है ही नहीं समय दर्शन में, यह अनिश्चयता क्योंकि ध्रुव उसने पसरा है, कई अपेक्षा से उसे अनिश्चय कहा, मैंने अनिश्चय ध्रुव के अंदर में अनिश्चयता नहीं है, ध्रुव के अंदर में पर्याय नहीं है, ये बात वहाँ पे बाबू जी ने दी है कि सम्यक दर्शन के अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय अनिश्चय उसके अंदर में मैं ध्रुव हूँ ऐसा है। भाव स्वरूप ज्ञान और स्वस्थ मदन ज्ञान में क्या अंतर है, अचक्षु मानस दर्शन क्या है, सविकल स्वेदन निर्विकलता में जाता है, आत्म जागृति और आत्मा की श्रद्धा एक ही है, आत्मा का अवग्रह या उपास धारणा में क्या है, अनुभूति के सटल मनस से आत्मा का वेदन होता है तो आत्मानुभूति में जाता है।
एकाग्र होकर आत्मा का निरंतर आनंद भोगना तो वही ज्ञान की प्रक्रिया है। एक और बात करती है उसको मती ज्ञान नहीं देते नहीं प्रक्रिया है। अचक्षु मानस दर्शन क्या है, चक्षु जो पदार्थों को जानते हैं तो वो चक्षु दर्शन हुआ उसके पहले, और उसके बिना जो दर्शनों में होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो मन के निमित्त मन भी तो मती ज्ञान लेने में तो रहता है ना, और मति ज्ञान दर्शनों में जो पूर्वक होता है तो इस प्रगति में ये जो प्रश्न है उसके आधार से मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर जहाँ से नीचे आए उसका पूरा संग्रहण देखा जाए तो वो सामो बाद वो बात हो सकता है कोई और हो, लेकिन मैं सबसे बात को बजा रहा हूँ तो मन के निमित्त जो विकल्प हो गए तो उससे पूर्व जो प्रश्नों में होता है वो प्रत्यक्ष मान दर्शन है। ले जाता है क्या? नहीं नहीं, विकल्प से नहीं जाता है। विकल्प पहले होगा तो दूसरी बात है कि ज्यादा आपने आत्मी घरत से लगन से पुरुषार्थ से खोजते जाता है। जैसे अपन खोजन करते हैं तो दांतों से उसको चबाते हैं तो उसके बाद में वो अंदर उतर जाता है, तो ये दांतों से जाता है कि चबाने से जाता है, चबाने के बाद ही खोज सकता है। घर में आया मुझे तो भोजन करने की वृद्धि और सदा की कोशिश करती वो भूख उसको खींच लेती है। ऐसे चैतन्य के आदमी की भूख को खींच लेती है। तो बात तो बहुत है, लेकिन ये परफेक्ट है। हृदय की सदा तो चैतन्य ही कह रहे हैं। आत्म जागृति और आत्मा की श्रद्धा एक से है क्या? लेकिन जागृति वाला पॉइंट है वो तो जो गौरव नदी मिला है मुझे तो इन बातों को समझ कर मेरा ही करना चाहिए। जहाँ से समय से सम्मुखता का पहला कदम हुआ आज में इसकी दृष्टि कमी के आज में ही करने का संकल्प बदल हुआ जागृति उसको अपने वहां से ले सकते है। लेकिन सही जागृति तो चैतन्य की अनुभूति में ही जागृति मिथ्या की नींद में तो नहीं हुआ है उसने मुझे जागृति। अभी एक बात आई थी जो अज्ञान में ज्ञान वाली बात मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। नशे वाले को कभी पता नहीं रहता कि मैं नशे में हूँ। वो जागृत को जानता है कि ये चीज नशे में है, लेकिन जब नशा उतरने लगता है डाउन होने लगता है तब उसे बोध होने लगता है कि यार इसे दर्द होती है। ऐसे निर्ध्या की मंदता में मोह की मंदता में ज्ञान अज्ञान में ये दृष्टि खड़ी होती है। ज्ञान का अंत कहते हो ये सन्मुखता का प्रथम बिंदु है। आत्मा का ये क्या
है?
अवैध अवैध धारणा है कि आत्मा आएगा और किस लेवल से आएगा वो जो भी चीज है। अवैध भी नदी ज्ञान की पर्याय है ना, तो नदी ज्ञान सन्मुख हुआ तो अवैध में भी आत्मा। अब उसको अपन भाषा देंगे तो आत्मा बना मत ज्ञान का तो मत ज्ञान के हर एक स्टेप का ये आत्मा बना। अनुभूति से पहले मन से आत्मा का विलय होता है और आत्मा अनुभूति में ले जाते हैं। वही हुआ ऐसा कौन चीजें विकल्प जरूर है। विकल्प के द्वारा सही संस्कारे द्वारा मेरे व्यक्त होने का विधान कौन स्थिति में ये प्रकरण आया है। लेकिन अगर से आप बॉम्बे से इधर आए तो मैं संबंध कोई भी आता है करते तो उनको इधर पुलिस से फोन कर देना तो पता चल जाएगा कि 40 मिनट में गाड़ी एक गाड़ी आ जाएगी। तो इधर पुलिस से 40 मिनट में आया तो उसमें एक पुलिस का कितना अनुभव होता है? उसने धक्का लगाया था उसने ट्रेन आदमी उसने क्या किया था और जो बीच में आया था तो बेटा ने ये कहा ऐसे कोई निर्णयात्मक ज्ञान से यही वास्तव में प्रगति ज्ञान है तो स्वरूप का संवेदन तो वो भूख भूख ही दूसरी है और संवेदन एक जीवन लक्षण का होता है प्रतिक्रमण होगा लेकिन भाव पूरा समय प्रसन्न हो भेद ज्ञान दूसरी प्रगत हो उसको भाव ज्ञान का हो। और इस तरह का प्रश्न जैसा मैंने नाम उठाया समय पर बता 1960 के बाद वाला दूसरा सम्मेलन क्यों लेते हैं क्या सम्मेलन भी होता है? तो आगे ने कहा हाँ सारी जगत के गुणों को जितना विज्ञान संबोधन है वो सब सलाद पर संवेदन इसलिए वो खेतों से रात के हटे हुए खाए ज्ञान का एक और का जो सम्मेलन होता है उसको ही भारत ज्ञान
પોતે પોતાના સત્કાર થી જન્મ કામ ક્રમશ થાય છે અને આજે સવારે ગુરુના પ્રવચનમાં આવ્યું કે ભાવ મનના ગુણથી પર્યાય કરે. સૌને દેખીએ પર્યાય તો અપને દ્રવ્ય ગુણથી અપેક્ષા નહીં. એ બાદ પર્યાય જોથી એક સમયકાર સત હે પર સત અહેતુ હોતા હે તો સત કો અપને પરિણામ પર્યાય કબ કહેતી જબ ઉસકા ઉત્પાદ હોતા તબ પર્યાય કહેલાતી. ઉસકે પહેલે પરિણામિક ભાવ છે ઔર વ્યય કે પશ્ચાત ભી પરિણામિક ભાવ છે. જબ ઉત્પાદ હોતા તો વો પર્યાય કહેલાતી હૈ ઔર પર્યાય જો ઉત્પન્ન હુઈ વો કિસી કી અપેક્ષા કરતે ઉત્પન્ન નહીં હુઈ. ઉસકા ઉત્પાદ ભી નિરપેક્ષ હૈ, ઉસકા વ્યય ભી નિરપેક્ષ હૈ, ઉસકા એક સમયકાર જો રહેના જો હૈ વો ભી નિરપેક્ષ હૈ. વો કિસી અપેક્ષા સે નહીં હોતી હૈ, યે ઉનકા સ્વભાવ હૈ. પર્યાય એક સમય કા સત હોને કે કારણ અપને સ્વભાવ સે અપની યોગ્યતા સે અપની લાયકાત સે કર્મબદ્ધ સે પરિણમિત હોતી હૈ. ઔર ગુરુદેવ કા જો પ્રવચન મેં જો બાત હૈ કે ભાવ નામના ગુણ થી પર્યાય થાય છે તો બરાબર છે, પણ આત્મા મેં ભાવ નામ કા ગુણ હૈ ઔર વો ભાવ નામ કે ગુણ કે કારણ પર્યાય હુઆ કરતી હૈ, યે ઇનકા સ્વભાવ હૈ.
ક્યા માને દ્રવ્ય સે, દ્રવ્ય સે હોતી હૈ કે નહીં, ગુણ સે હોતી હૈ કે નહીં, સ્વતંત્ર સત્કાર સે હોતી હૈ, એસા માને કે ભાવ નામ કે ગુણ સે હોતી હૈ, ઉસકો દોનોં મેં જરૂર નજર આ રહા હૈ. ઇસલિયે
કભી યહાં
સરકાર આપકે સમજી
અપેક્ષા હૈ દોનોં તરફ સે. પડતે એક વાર મુજબ બહુ બોલતે હૈ કે પર્યાય સત્કાર સે હોતી હૈ તો ઉસમે ઉસકી સત્તા કી યોગ્યતા ઔર સ્વતંત્રતા દેખાઈ દે. और जब द्रव्य परिणाम का है या गुण परिणाम का है तो पर्ची परिणाम किसी व्यक्ति की है ये दिखाना है. तो दोनों तरह मेरे ज्ञान का प्रयोजन है, अपेक्षा से दोनों बातें के साथ
एकदम सही. दोनों एक तो कोई वस्तु की अपेक्षा से बात करनी हो तो एक बात है, पर्याय की सत्ता से बात करनी हो, पर्याय की स्वतंत्रता से बात करनी हो तो एक बात है. वृत्ति प्रवर्तित नहीं होती पर्याय की नास्ती अस्थि की मस्ती में, वृत्ति प्रवर्तित नहीं होती. पर्याय की नास्ती अस्थि की मस्ती में वृत्ति प्रवर्तित नहीं होती. वृत्ति प्रवर्तित है क्या, वृत्त नहीं होना है.
बाबू जी की भाषा से लिया है.
हाँ लिया तो आज वो विषय चला था, तो अस्थि की मस्ती की बात अपनी चली. पर्याय की अस्थि मेरे में नास्ती, ऐसी मेरी अस्थि, इस अस्थि की मस्ती का नाम अनुभूति है. और जब ऐसी अस्थि की मस्ती होती है तो उसके अंदर में द्रव्य रहता है, ध्रुव रहता है, बात चली थी, उसके अंदर में पर्याय ही रहता. पर्याय तो समाप्त नहीं होता, पर्याय का धर्म समाप्त नहीं होता, पर्याय तो समाप्त हो जाता. मैं ध्रुव हूँ ऐसा अहम उसमें प्रवर्तित होता
है. और प्रवृत्ति में क्या अंतर है
बोलिए. કભી કભી પ્રવૃત્તિ કાભિપ્રાય નહીં કરતે બાદ કહા પે ક્યા બાત હૈજેન્ડા પે ક્યા હૈ વિષય ક્યા હૈ સચ ક્યા કરના ઉસકે ઉપર સારે કે સારે નિર્ભર કરતે હૈ. સમય હો ગયા બોલો. પરમ કૃપાળુ અનંત ઉપકારી શ્રી સદગુરુ ગુરુદેવ શ્રીના પરમ પરમ ઉપકાર નો હમ બાળકોના કારણ હા શ્રી કહાન ગુરુદેવ નો ભવ સંતાપના હતા ખુરાવા મા વિદેતી ભરતમાં પદાર્થનાથ કહાન ગુરુદેવ નો જય હો વિજય હો કહાન ગુરુદેવ.
वो कलर बहुत ज्यादा है.
गुरुदेव की बात आती है
बराबर आज आज देख रहे होगा सुबह बोले आपको
लेकिन यहाँ ज्यादा यहाँ मौसम वही बन जाता है तो मैं लेकिन कुमार भगवान સાડા કદાચ જો આપડે થોડો ટાઈમ મળે ત્રણ દિવસ પતી જાય તો છેલ્લા 15-20 હતો અને જો ન થતું હોય તો આનું તમે ધ્યાન ગોઠવી છે એને આપણે અરજી કરતી કરશું એમાં અડધો કલાક આપણે થોડા પ્રશ્નો જણાવશે. હા વાંધો એટલે તો મને બને રીતે આપણે બોલ લેવાનું ચોક્કસ.